आज हम जापान की विदेश राजनीति 1922 से 1931 पर चर्चा करेंगे। एशिया के आधुनिक इतिहास में सन 1931 से एक नए युग का आरंभ होता है। इस साल जापान ने अपने साम्राज्य विस्तार की उस प्रक्रिया को आरंभ किया था, जिसके कारण सन 1942 तक उसने संपूर्ण पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 1894-95 के चीन जापान युद्ध के समय से जापान ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना आरंभ किया। 1922 में वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस के समय तक जापान अपने उद्देश्य में कुछ हद तक सफल हुआ था। 1922 से 31 तक साम्राज्यवाद के विस्तार के संबंध में जापान की नीति बदल चुकी थी। 1914 से 1918 के महायुद्ध द्वारा संसार में आधुनिक युग की नवीन प्रवृत्तियों को बहुत बल मिला था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप में जर्मनी के होहेनशटॉर्न, ऑस्ट्रिया हंगरी के हैब्सबर्ग और रूस के रोमनोव राजवंशों का अंत हुआ। फ्रांस के बुर्बो राजवंश के समान ही ये तीनों यूरोप के अत्यंत प्राचीन व वैभवशाली राजवंश थे। साथ ही इस समय यूरोप में अनेक नए राज्यों की स्थापना भी हुई, जिसका आधार राष्ट्रीयता का सिद्धांत था। चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, यूगोस्लोवाकिया आदि के रूप में जो अनेक नए राज्य इस समय बने थे, वे राष्ट्रीयता की विजय के स्पष्ट प्रमाण थे। साथ ही जहां इन नए राज्यों में लोकतंत्र रिपब्लिकों की स्थापना हुई थी, वहां जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रूस आदि पुराने राज्यों में भी लोकतंत्र शासनों का सूत्रपात हुआ। राष्ट्रीयता और लोकतंत्रवाद की लहर केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं रही थी। भारत में इस समय असहयोग आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की स्थिति को बहुत कुछ डावाडोल कर दिया था। तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में सुल्तान के शासन का अंत होकर रिपब्लिक की स्थापना हो गई थी। चीन में विद्यार्थी आंदोलन ने अपना प्रचंड रूप धारण कर लिया था कि शंघाई आदि नगरों में विदेशी लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं रह गया। महायुद्ध के बाद का काल साम्राज्य विस्तार के लिए अनुकूल नहीं था। राष्ट्रपति विल्सन के नेतृत्व में राष्ट्र संघ द्वारा जो नए आदर्श प्रतिपादित किए जा रहे थे, वे राष्ट्रीयता के सिद्धांत और स्वतंत्रता और लोकतंत्रवाद को बहुत महत्व देते थे। इस दशा में जापान जैसे साम्राज्यवादी देश के लिए भी यह संभव नहीं था कि वह समय की प्रवृत्ति के विपरीत चीन में अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के लिए प्रयत्नशील हो सके। वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में जापान ने जो शांतुंग प्रांत में अपने विशेषाधिकारों के परित्याग की बात को स्वीकार कर ली थी और उत्तरी मंचूरिया के मामले में भी अमेरिका के साथ समझौता कर लिया था। चीन में विद्यार्थी आंदोलन जिस प्रकार उग्र रूप धारण कर रहा था, उसे दृष्टि में रखते हुए जापान ने यह भली भांति समझ लिया कि यह समय साम्राज्य विस्तार के लिए अनुकूल नहीं है। जब किमिंगतोंग दल की शक्ति चीन में बढ़नी शुरू हुई, तो जनता में राष्ट्रीय भावनाओं का बड़ी प्रबलता के साथ संचार हुआ। चीन की यह राष्ट्रीयता विदेशियों के प्रति विद्वेष की भावना से परिपूर्ण थी। इसलिए जब किमिंगतोंग दल की सेनाओं ने कैंटन से उत्तर की ओर बढ़ना शुरू किया, तो उन्होंने विदेशी लोगों पर कई स्थानों पर आक्रमण किए। मार्च 1927 में जब चियांग काईशेक की सेनाएं नानकिंग में प्रविष्ट हुई, तो उन्होंने जापानी दूतावास पर हमला किया और अनेक जापानी नागरिक उनके क्रोध के शिकार बने। हैंको आदि अन्य नगरों में भी जापानी और अन्य विदेशियों पर इसी तरह के आक्रमण हुए। इस समय जापानी, ब्रिटिश, फ्रेंच आदि सरकारें जो चीन की राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को कुचलने के लिए अपनी प्रबल सैन्य शक्ति का उपयोग नहीं कर सकी। उसका एक प्रमुख कारण इस समय सर्वत्र राष्ट्रीयता और लोकतंत्रवाद का जोर होना था। विदेशी लोग अनुभव करते थे कि चीनी राष्ट्रवादियों के विरुद्ध उग्र उपायों के अवलंबन का यह परिणाम होगा कि संसार का लोकमत उनके खिलाफ हो जाएगा। इसी का यह परिणाम था कि कुमिंगतोंग सरकार अपने देश से विदेशियों के प्रभुत्व को दूर कर सकने में बहुत अंश तक सफलता प्राप्त करने में समर्थ हुई थी, पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि चीन से विदेशी प्रभाव व प्रभुत्व का पूर्ण रूप से अंत हो गया था। विदेशी नागरिकों को एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी के अधिकार अब भी प्राप्त थे। जापान भी ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका आदि के समान उनका उपभोग करता। कोरिया तो पूर्ण रूप से जापान के प्रभुत्व में था ही, मंचूरिया में भी वह अपने आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व का विस्तार करने में तत्पर था। मंचूरिया के सिपा सलार चांग त्शो-लिन के साथ जापानी सरकार का समझौता हो चुका था। यह शक्तिशाली सिपा सलार जापानियों के आर्थिक प्रभुत्व का विरोध नहीं करता था, साथ ही उसे इस बात में भी कोई आपत्ति नहीं थी कि रेलवे के क्षेत्र में जापानी अपने राजनीतिक व सैनिक प्रभुत्व को कायम रखें। चांग त्शो-लिन पेकिंग की केंद्रीय सरकार के झगड़ों में इतना व्यस्त था कि अपने प्रदेश में विदेशियों के बढ़ते हुए प्रभाव की ओर उसे ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं थी। पर जापानी लोग भली भांति समझते थे कि चांग त्शो-लिन जैसे शक्तिशाली सिपा सलार के रहते हुए मंचूरिया में उनका मार्ग सर्वथा सुरक्षित नहीं रह सकता। जून 1928 में जिस प्रकार एक बम द्वारा अकस्मात चांग त्शो-लिन का देहावसान हो गया था, उसे दृष्टि में रखकर अनेक इतिहासकारों का विचार है कि उसकी मृत्यु में जापानी लोगों का हाथ था। कुछ समय बाद ही 1931 में जापानी लोगों ने मंचूरिया में अपने प्रभुत्व को पूर्ण रूप से स्थापित करने का प्रबल प्रयत्न आरंभ कर दिया और उस प्रदेश में मचुकुओ नाम से एक पृथक राज्य की स्थापना की। मचुकुओ राज्य जापान की संरक्षा में कायम हुआ था और चीन के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं था। पर इस प्रसंग में यह ध्यान रखना चाहिए कि 1922 से 1931 तक जापान ने अपने साम्राज्य के प्रसार के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया। इस समय जापान के आंतरिक शासन में भी लोकतंत्रवाद की प्रवृत्ति प्रबल हो रही थी और जनता पार्लियामेंट्री शासन की स्थापना में तत्पर थी। इस दशा में यह स्वाभाविक था जापान साम्राज्य विस्तार के कार्य पर विशेष ध्यान न दे सके।